மங்களம் பகவானி வீரோ மங்களம் மங்களம் குந்த குந்தாயோ மங்களி மங்களம் சர்வ கல்யாண காரிகம் பிரதானம் சர்வ தர்மாணாம் ஜெயம் ஜெயது பச்சாஸ் நம்பர் கீ கதா கல் ஹம்னே ஷுரூ கீ தி ஔர் சுத்த பாவ அதிகார கே விஷய வஸ்து கீ யே பஹுத் மஹத்வபூர்ண கதா ஹை யே உபாதேய தத்துவ கே ஸ்வரூப் கா ஜிஸ் கஹராயி சே ஆச்சார்ய தேவ் நே பிரதிபாதன் கியா ஹை வோ அப்னே ஆப் மே அனோகா ஹை. गुरुदेव श्री इस दाता के प्रवचन के प्रारंभ में ही ये बात कहते हैं, देखिए प्रवचन प्रथम चिंता में डाला हुआ है, उसमें गुरुदेव श्री फरमाते हैं श्री नियम सार की यह 50वीं गाथा जरा कड़क है, सख्त है। यहां तो क्षायिक भाव को भी व्यवहार नय के विषय में ले लिया है, ज्ञायक भाव रूप परम पारनामिक भाव की अपेक्षा से औदयिक भाव और छायिक भाव दोनों व्यवहार नय का विषय है। गजब की बात है, बहुत कड़क जाता है। क्यों कड़क जाता है? वो कहते हैं भाई औदयिक भाव और छायिक भाव दोनों किस नय का विषय है? कि दोनों व्यवहार नहीं का विषय, क्यों? एक समय की उत्पाद रूप पर्याय। अब पर्याय में एक समय की उत्पाद रूप पर्याय में औदयिक भाव है, औदयिक भाव मतलब राग देश मोह अथवा राग देश मोह की प्रचुरता, अथवा क्षायिक भाव है, मैंने क्षायिक भाव उसे कहते हैं जहां संपूर्ण शुद्धता प्रकट हो जाए और उसके बाद उसमें वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है। भाव माने क्या? सर्वथा निर्मल पर्याय, जिसके बाद उसमें अब वृद्धि की संभावना नहीं, शुद्धि की वृद्धि, संवर शुद्धि का प्रकट होना, निर्जरा शुद्धि की वृद्धि और मोक्ष शुद्धि की पूर्णता, बोलते ना पर शुद्धि की फिर कोई भी छायिक पर्याय हो, छायिक पर्याय कहते ही उसे हैं जहां पूर्ण शुद्ध उसका रूप प्रकट हो जाए, जिसके बाद अभी उसमें कोई गुंजाइश नहीं बची कि और शुद्धता बढ़ेगी इसमें, ऐसा नहीं। और औदयिक भाव की अगर हम बात करें उघाड़ बचा है, आवरण नहीं आता, ये तो इतना औदयिक भाव है, औदयिक भाव की इतनी प्रचुरता है तो बस वो जड़ ही नहीं हो गया, बस इतना। तो वो यहाँ पे आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि ये जो दोनों भाव है ना, औदयिक भाव हो और छायिक भाव हो, ये दोनों व्यवहार नहीं का विषय है। इस अपेक्षा से जब परम पारनामिक भाव को देखते हैं, परम पारनामिक भाव की अपेक्षा से दोनों व्यवहार नहीं का विषय। देखो एक अपने यहां एक चर्चा आती है, एक परम भाव और अपरम भाव की चर्चा अपने यहां पर। परम भाव माने क्या? अपरम भाव माने क्या? परम माने उत्कृष्ट भाव और अपरम माने उत्कृष्ट नहीं, अपरम। उसमें दो तरह से दिनानंद ने कथन दिया। जब त्रिकाली गैर भाव को परम भाव कहा जाएगा उसकी अपेक्षा से पर्याय रूप चार भावों को अपरम भाव माने, यानी वो तो छाई भाव है, अपने छाई हो, उसका जीवन मात्र एक समय का है, दो समय का केवल यहां कभी इकट्ठा नहीं होता। मलिन पर्याय है तो एक समय में चली जाए और निर्मल पर्याय है तो दो समय टिके, ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? तो अगर कोई भी परिणमन, कोई भी पर्याय यदि दो समय टिके तो क्या होगा? एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा होगा, दो समय टिके तो क्या होगा? तो फिर अगर वो जब एक समय की मर्यादा को उसने तोड़ दिया और वो दो समय तीन समय टिके तो क्या होगा? फिर तो चार समय टिकेगा तो क्या होगा? इसका कोई उत्तर ही नहीं है ना। अगर वो परिणमन है और बदलना उसका स्वभाव है तो उसको बदलने में एक समय में बदल ही जाना चाहिए, तभी वो पर्याय पर को प्राप्त है ना। और ओ, 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 ए, कोई भी पर्याय हो, उसमें औदयिक भाव की पर्याय हो या क्षायिक भाव की पर्याय हो, तो इस एंगल से हम देखते हैं उसे, तो उसमें निरंतर बदलना, एक एक समय करके निरंतर बदलना, वो उसका स्वभाव है। पर्याय की व्याख्या जहां प्रवचन साल में 80 नंबर की व्याख्या में पर्याय की व्याख्या की, उन्होंने कहा अन्वय व्यतिरेक वह पर्याय। अन्वय व्यतिरेक का मतलब क्या? तो परस्पर में अप्रवर्त, एक समय की का एक समय की काल मर्यादा वाले, परस्पर में अप्रवर्त अन्वय के व्यतिरेक, उसका नाम पर्याय। क्या मतलब? एक समय की उनकी मर्यादा। दूसरा, एक परिणाम दूसरे परिणाम में प्रवर्तता नहीं है, एक समय की मर्यादा वाले परस्पर में अप्रवर्त। मतलब क्या? पूर्व पर्याय का व्यय उसका नाम उत्तर पर्याय का उत्पाद, और उत्तर पर्याय का उत्पाद हुआ तो पूर्व पर्याय का व्यय हो जाता है। ऐसा नहीं होता, व्यय उत्पाद को नहीं देखता और उत्पाद कभी भी पूर्व पर्याय के मैंने व्यय को नहीं देखा। तो ये बात चारों भावों में, यहां भावों की अपेक्षा बात की ना, तो ये बात चारों भावों में समान रूप से लागू होती है। तो परम पारमार्थिक भाव को जब परम भाव कहा जाएगा तो औदयिक भाव से लेकर छायिक भाव को अपरम भाव कहा जाएगा, मतलब परम पारमार्थिक भाव की अपेक्षा से वे सब अपरम है, एकमात्र परम पारमार्थिक भाव ही परम है। और जब पर्याय पर्याय रूप भावों में चर्चा की जाती है तो छायिक भाव को परम कहा जाता है और बाकी के भावों को अपरम कहा जाता है, वो सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन वो भी पर्याय पर्याय में तुलना करो तो परम पारिणामिक भाव के सामने तो कैसा भी उत्कृष्टतम छायिक भाव हो, अरे यहां तक कि सिद्ध दशा रूप छायिक भाव हो, तो भी उस कारण परमात्मा के सामने, परम पारिणामिक भाव के सामने वह भाव भी अपरम भाव है। समझ आए? सीधा सीधा परिभाषा करें, जिसके अवलंबन से सम्यक की उपलब्धि हो वह परम भाव, और जिसके अवलंबन से सम्यक्त की उत्पत्ति नहीं हो वह अपरम भाव। ठीक, तो इस परिभाषा पे हम कहते हैं तो एकमात्र परम पारमार्थिक भाव के अवलंबन से सम्यक्त की उत्पत्ति होती है, इसलिए वो परम भाव है और बाकी के चार भाव के अवलंबन से सम्यक्त की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए वो अपरम भाव। इसी तरह स्वद्रव्य परद्रव्य की व्याख्या करें अपन, जिसका अवलंबन सम्यक दर्शन का उत्पादक है वह स्वद्रव्य, और जिसका अवलंबन सम्यक दर्शन का उत्पादक नहीं वो परद्रव्य। समझाएंगे? सम्यक दर्शन के लिए सम्यक दर्शन भी परद्रव्य है। समझाएंगे? सम्यक दर्शन के स्वद्रव्य कौन? स्वद्रव्य एक परंपरा है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा तो भाई आप गाथा बड़ी सकत है। क्यों सकत है? कहा अभी तो एक इनका एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा। ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव रूप परम पारमार्थिक भाव की अपेक्षा से औदयिक भाव और छायिक भाव दोनों व्यवहार नहीं का विषय है। औदयिक भाव छायिक भाव को लिया, सर्वाधिक पतन औदयिक भाव और उत्थान छायिक भाव आ गया। सिद्धों का छाई, सिद्धों की प्रकट छाई दशा, उससे ज्यादा पर्याय में उत्थान नहीं। और निगोध की प्रकट दशा, उससे ज्यादा पर्याय अपेक्षा से पतन नहीं। वो पतन की अवस्था और वो उत्थान की अवस्था और बीच की सारी अवस्थाएं ले लेना, ये सब व्यवहार नहीं कुछ। और व्यवहार नहीं सब ही अभूतार्थ होने से, ग्यारहवीं नंबर की गाथा में आया गया, सब जगह विषय आया, ग्यारहवीं नंबर की गाथा में आया गया, व्यवहार में सब ही अभूतार्थ होने से, वहां का व्यवहार में सब ही मतलब क्या, कोई ये कहे हाँ ठीक है औदयिक ही भाव तो असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है, लेकिन छाई भाव तो सद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है, तो सद्भुत और असद्भुत को तो एक में रख के गिनो। सद्भुत और असद्भुत को तो एक गिनो, है तो व्यवहार में सद्भुत और असद्भुत, ये तो व्यवहार के भेद है। हम तो ये कह रहे व्यवहार मात्र अभूता, तो तुम उसमें ये सद्भुत है ये असद्भुत है ऐसा क्यों लाए आ गया। तो उन्होंने कहा वहां कहा व्यवहार में सभी अभूता, और उधर क्या लिया उसने सामने प्रतिपक्ष में शुद्ध नय एक ही, क्यों, क्योंकि शुद्ध नय के प्रकार नहीं होते, निश्चय नय के प्रकार नहीं होते, और जो प्रकार निश्चय नय के कहे जाते हैं एक देश शुद्ध निश्चय ने, साक्षात शुद्ध निश्चय ने, अशुद्ध निश्चय ने और परम शुद्ध निश्चय ने, इसे चार प्रकार किए जाते हैं ना, तो परम शुद्ध निश्चय नय के अलावा बाकी के निश्चय नय के तीन प्रकार आगे चल करके व्यवहार में गर्भित हो जाते। अशुद्ध निश्चय नय एक देश शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से व्यवहार, एक देश शुद्ध निश्चय नय साक्षात शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से व्यवहार, साक्षात शुद्ध निश्चय नय परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से व्यवहार, और परम शुद्ध निश्चय नय ऐसा है जिसे कोई कभी व्यवहार कर ही नहीं सकता। तो बोलो व्यवहार कितने, निश्चय कितने थे, जो कभी व्यवहार और कभी निश्चय, कभी व्यवहार कभी निश्चय, कभी व्यवहार और कभी निश्चय, ऐसा जो बदलता है उसको व्यवहार ही कहते हैं। तो निश्चय ने एक ही प्रकार, निश्चय ने एक ही प्रकार का ना, उसका विषय वो शुद्धात्मा एक प्रकार, और जो भी है शुद्ध और अशुद्ध सब पर्याय औदयिक भाव से लेकर छायिक भाव तक, तो वो सब व्यवहार ने का विषय, व्यवहार ने का विषय माने आश्रय करने लायक नहीं, जानने लायक भले हो आश्रय करने लायक नहीं। एक बात पक्का समझ लेना, आश्रय तो हमेशा त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का ही किया जाता है, अन्य किसी का आश्रय नहीं किया जाता, ये आया विषय है। परंतु वे कोई निश्चय नय के विषय में नहीं आते, इस कारण उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा सूक्ष्म एक बात तो गुरुदेव ने कही। दूसरा कहा तो दूसरे प्रकार से कहें तो एक और एक ही प्रभु आत्मा है, कौन है, एक मात्र एक और एक प्रभु आत्मा रूप परमात्मा, परम पारमार्थिक भाव जिसे कहा गया, नित्य शुद्ध जिसे कहा गया, सहज शुद्ध जिसे कहा गया, निरावरण जिसे कहा गया, सामान्य स्वभाव जिसे कहा गया, भूतात्म स्वभाव जिसे कहा गया, ज्ञायक भाव जिसे कहा गया, अलग अलग गाथाओं में अलग अलग शब्दों से कहा गया, तो वो परमात्मा, और दूसरी ओर विकल्प पर्याय से लेकर सब है जो कि लोक में और पर में जाता है, इस कारण एक स्वरूप भगवान आत्मा की दृष्टि में उसकी दो जाति की पर्यायों में भी अंतर नहीं है, दो जाति की पर्याय कौन सी? उदयिक भाव मलिनता, शायिक भाव निर्मलता। वो उसी की दो जाति की पर्याय है ना, उसमें परस्पर हम तो दोनों को है इतना देखते हैं, उत्पाद वे रूप है इतना देखते हैं, एक समय वर्ती है इतना देखते हैं, क्षणिक है इतना देखते हैं, सापेक्ष है इतना देखते हैं, कोई अंतर नहीं, हम अंतर देखते हैं। और तब अब जब वो कह रहे हैं जब इतनी औदयिक भाव और क्षायिक भाव में अंतर नहीं है, तब फिर प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग में अंतर है, ऐसा कैसे हो सकता है? अर्थात ऐसा है ही, ये बात गुरुदेव ने शुरुआत में कही। बहुत अद्भुत गाथा है भैया, बहुत मजेदार गाथा है। देखो अब अपनी जो गाथा की इधर चली थी कल, थोड़ा अपने गाथा पढ़ ली थी, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं गाथा को, बहुत अच्छी गाथा है। देखिए
ओ गुप्त स्वयल भाव सगतव्यम पर तम हरे परद्रव्य पर भाव है पूर्वोक्त सारे भावी
वाली बात नहीं, घुमा फिरा की बात नहीं हो, ऐसी बात नहीं, दो चार जैसी बात आचार्य कर रहे हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे? पूर्वोक्त सर्वभाव, सर्वभाव में क्या भाव लिया था कल थोड़ी चर्चा की थी। पूर्वोक्त माने पूर्व में कहे गए सर्वभाव, सर्वभाव में माने पारनामिक भाव को छोड़कर औदयिक भाव, औपशमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव और क्षायिक भाव, ये जो सर्वभाव है ना, ये सर्वभाव पर स्वभाव है। पहला शब्द क्या किया? पर द्रव्य कहना है ना, द्रव्य पर द्रव्य कहना है तो पहले उनका स्वभाव पर स्वभाव कहना है। पर स्वभाव है, पर स्वभाव में का मतलब क्या है? त्रिकाली नित्य ध्रुव शाश्वत एक रूप स्वभाव नहीं है, इसलिए कहा पर स्वभाव है। और जो स्वभाव पर है फिर क्या है? वे पर द्रव्य है। क्यों? क्योंकि इधर स्व स्वभाव भगवान आत्मा को स्वद्रव्य कहेंगे, इन चार भावों को पर स्वभाव कहकर पर द्रव्य का आगे चर्चा करेंगे। इसीलिए जो पर द्रव्य है ना, इसीलिए ये है एक समय की पर्याय रूप पर द्रव्य है, ये है अर्थात आश्रय करने लायक नहीं। यहाँ परद्रव्य माने वो अन्य परद्रव्य जो है ना, जैसे उद्गल धर्म धर्म आकाश काल, उस तरह की बात नहीं। अपनी ही पर्याय में होने पर भी, एक समय की अवस्था होने पर भी, क्योंकि वो अवस्था है ना, उसका उत्पाद रूप स्वभाव है, त्रिकाली स्वभाव से अनमेल स्वभाव है, इसलिए पहले तो उनको कहा परद्रव्य, परभाव, और परभाव कहकर फिर कहा वो परद्रव्य है। और कैसे है तो वो ये है, ये ही माने उनका अवलंबन आश्रय, उनमें अपनापन में पना करने योग्य नहीं है। अंत तत्व ऐसा स्वद्रव्य, जब अपने आत्मा को स्वद्रव्य कहेंगे और अंत तत्व कहेंगे, उन चार भावों को कौन सा भाव कहेंगे? तो इधर इनको कहेंगे अंत तत्व, तो उनको कहेंगे बहिर्तत्व, ठीक है। इसको कहेंगे स्वद्रव्य, तो उन भावों को कहेंगे पर। आगे समझ आ गई क्या? वो कठिन नहीं है बात। आत्मा उपादे, ऐसा आत्मा वो क्या है? तो आचार्य कहते उपादे भवेत माने है उपादे। उपादे का मतलब क्या होता है? उपाधे का मतलब आश्रय योग्य। आश्रय योग्य का मतलब क्या होता है? आश्रय योग्य का मतलब यही मैं हूं, ऐसा श्रद्धा ज्ञान और अनुभव करने योग्य। देखो श्रद्धा ज्ञान अनुभव करने वाली है पर्याय, त्रिकाली की श्रद्धा त्रिकाली नहीं करता, ये सारा काम पर्याय में होता है। किस पर्याय में ये काम होता है, जो पर्याय ये भूल जाती है कि मैं पर्याय हूं, पर्याय का पर्याय बना रखकर, पर्याय का अस्तित्व जीवंत रखकर ध्रुव स्वभाव का अवलोकन नहीं होता, बल्कि मानव पर्याय का अस्तित्व ही मिट गया, अंतर्धान हो गया, वो पर्याय पर्याय को दिखाई नहीं देती, सम्य दर्शन सम्य दर्शन को दिखाई नहीं देता। सम्य दर्शन से अगर ये कोई प्रश्न करे, सम्य दर्शन का एक्सरे निकाले, समझो अपन थोड़ी कल्पना करें, सम्य दर्शन का कोई एक्सरे निकाले तो उसमें आपको सम्य दर्शन नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? ध्रुव त्रिकाली मिलेगा। सम्यक दर्शन में यदि सम्यक दर्शन मिले तो समझ लेना वो सम्यक दर्शन नहीं है, वो मिथ्या दर्शन है। क्यों? तू तो अपने को सम्यक दर्शन मान के बैठा, अपने को सम्यक दर्शन मान के बैठा माने मिथ्या दर्शन है, और अपने को त्रिकाली माना, अब माना है इस तरह मैं त्रिकाली को त्रिकाली मानती हूं, ये पर्याय का स्वर नहीं होता है। मैं त्रिकाली की श्रद्धा करती हूँ, ये पर्याय का स्वर नहीं होता है। ध्रुव का अहम सम्यक दर्शन नहीं है। क्या कहा? सम्यक दर्शन ध्रुव का अहम नहीं है, ध्रुव का अहम, इसमें तो भेद हो गया, ध्रुव अलग हो गया और ध्रुव का अहम, दो चीजें होगी ना। फिर क्या है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन ध्रुव का अहम नहीं, अपितु सम्यक दर्शन ध्रुव है, अर्थात मैं ध्रुव, ऐसे संचेतन का नाम सम्यक दर्शन, और मैं ध्रुव का अहम करता हूं, परिणाम का ये स्वर प्रकारांतर से मिथ्या दर्शन। क्यों? कि उसमें ध्रुव का अहम नहीं, सच में अहम का अहम है। आगे बहुत गंभीर बात है, समझनी पड़ेगी, कठिन नहीं है। कठिन इसलिए नहीं है कि आत्मा केवल ज्ञान लेने की ताकत रखता है, केवल ज्ञान का कंध है आत्मा, तो आत्मा को आत्मा की बात समझ में नहीं आ रही, ऐसा तीन काल में नहीं। बहुत बढ़िया गाथा है और टीका भी बहुत जोरदार है। टीका में एक विषय है, यह एक उपादे अथवा त्याग ग्रहण के स्वरूप का कथन है। अच्छी की तारीख है, कल कल आज और कल ये दो गाथा, ये दो गाथा अपनी चलेगी, उसके बाद 28 और 29 दो दिन का जो कार्यक्रम रहेगा ना, वो जो समय शिखर में अपना शिखर महोत्सव चल रहा है उसमें वो कार्यक्रम रहेगा, तो अपने इसी समय स्वाध्याय रहेगा। प्रवचन सार की पंच रत्न गाथाओं का स्वाध्याय है, 271 से 200 पूछे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा विषय। एक एक मैंने आप ये देखो, कभी कभी लगता है कि ये परमागम किस घड़ी में रचे होंगे आचार्य कुंड, समय सार, नियम सार और प्रवचन सार, एक अष्टानिका में अपने को तीन तीन परमागमों का रसा स्वादन करने का अपन लोगों को एक अवसर मिल रहा है। बहुत भाग्यशाली है अपन लोग, ये परमागम अपने हाथ में है, समझा ये नहीं है। अगर ये परमागम अपने हाथ में नहीं होते ना, अभी दशा क्या होती है। देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया बात है, यह है उपादे अथवा त्याग ग्रहण के स्वरूप का कथन है। ये चर्चा हुई। अब देखो यहां से, कि जो कोई विभाव गुण पर्याय है, जो कोई विभाव गुण पर्याय है, उनका अस्तित्व स्वरूप है, नहीं है ऐसा नहीं। क्यों? तो अगर होती ही नहीं तो फिर हे है जो उपादेय है, तो जो चीज है ही नहीं वो है या उपादेय है, ये प्रश्न ही खड़ा हुआ। तो पहले उन्होंने कहा कि जो कोई विभाव गुण पर्याय है, मैंने चार भाव की बात पूरी कर ली है। जो कोई विभाव में पर्याय है वे पहले उन 50वीं गाथा में, इसके पहले गाथा ही अपनी चर्चा उठ चुकी है, व्यवहार नये के कथन द्वारा उपादेय रूप से कही गई थी। 50 नंबर की गाथा में उपाधेय गाथा में व्यवहार नये के कथन का भी आया था, उपाधेय रूप से कही गई थी। और कौन कह रहे? आचार्य भगवान कह रहे हैं वो भी हमने ही कहा था व्यवहार नये के कथन से उपाधेय रूप से कही गई थी। का मतलब क्या था, क्या किया था उसका अपन ने? उपाधेय माने आश्रय करने की बात नहीं थी वहां पर, उपाधेय माने जानने योग्य। उपाधेय के बहुत अर्थ होते, देखो कितने अर्थ होते, आश्रय करने को उपाधेय बोलते, प्रकट करने योग्य उसको भी उपाधेय बोलते, संवर निद्रा मोक्ष प्रकट करने योग्य है, ठीक है। विभाव तो विभाव डंडा मार के भगाने योग्य उसको भी उपाधेय, भगाने के लिए उपाय। अगला जानने योग्य हो ये उसे भी उपाधेय बोलते हैं, जानने की अपेक्षा। मैंने रेफरेंस दिया था पंडित टोटर मल जी का, जिन मार्ग में तो दोनों नयों का उपाधेय का ग्रहण करना कहा, उन्होंने वहां पर उसका खुलासा किया था। ऐसा जानना उसका व्यवहार नये का मतलब ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया, ऐसा जानना ये व्यवहार नये का उपाधि। उपाधि में जानने को भी उपाधि कहते हैं। और एक अर्थ और होता है कार्य को उपादान कारण की अपेक्षा भी उपाधि। उपाधेय का कहां क्या अर्थ घटित होगा, जिन्होंने में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए अपने यहाँ पे बोलते ना पहले बेसिक नॉलेज जो होती है जिसको अपन बोलते हैं आधारभूत ज्ञान, जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला, जैन सिद्धांत प्रवेश रत्नमाला, है ना, ये जो जो भी पहले बनाए गए ना अपने यहाँ, इसीलिए बनाए गए क्योंकि जिनवाणी में ये सब लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको हर जगह, तो वो पहले उसकी बेसिक नॉलेज अपने को हो। उपाधेय का क्या क्या अर्थ होते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या अर्थ का प्रयोग होता है, फिर अपन जब जिनवाणी में वो शब्द आए तो उलझन में नहीं आवे और उस शब्द का वो अर्थ घटे। तो यहाँ पे उपाधेय रूप से कही गई थी का मतलब क्या है, जानने की अपेक्षा से उनको उपाधेय कहा गया था, किंतु शुद्ध निश्चय नये के बल से, अर्थात शुद्ध निश्चय नये से वे क्या है, वे अर्थात उनका आश्रय करने योग्य नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि शुद्ध निश्चय नये के विषय भूत जो ध्रुव त्रिकाली कारण परमात्मा है, जिसे समय सार में नित्य शुद्ध नित्य निरावरण कहा गया, यहाँ पे नियम सार में नित्य शुद्ध, एक तो ये शब्द का प्रयोग आपको बहुत मिलेगा, कौन सा, नित्य शुद्ध नियम सार में मिलेगा, दूसरा एक शब्द आपको मिलेगा नित्य निरावरण, क्या मतलब नित्य शुद्ध का क्या मतलब और नित्य निरावरण का क्या मतलब, एक होता है अनित्य शुद्ध और एक होता है अनित्य निरावरण। शाही भाव शुद्ध है लेकिन नित्य शुद्ध नहीं है, क्षायिक भाव निरावरण है लेकिन नित्य निरावरण नहीं, आवरण का अभाव करके निरावरण हुआ, ठीक है, आवरण का अभाव करके क्या हुआ वो निरावरण हुआ, और दूसरा अशुद्धता का अभाव करके शुद्ध हुआ। तो उसमें कल मैंने कर्म की बात की थी, आज दूसरी बात करूंगा, कल कर्म के अभाव की अपेक्षा लगाई थी, आज भाव कर्म के अभाव की अपेक्षा ये बात भी होगी, अशुद्धता भाव कर्म है, अशुद्धता का अभाव करके प्रकट होने वाली शुद्धता वो सापेक्ष शुद्धता हुई, वो नित्य शुद्धता नहीं, क्यों, क्योंकि जब अशुद्धता का अभाव नहीं हुआ था तब अशुद्धता थी, और जो केवल ज्ञान आदि सारी भाव निरावरण हुआ ना तो कहते आवरण का अभाव हुआ उसका, ज्ञानावरणी करके क्या तो हो ही गया, लेकिन आवरण का अभाव होकर के वो निरावरण हुआ, इसका मतलब क्या, वो आवरण का अभाव करके निरावरण हुआ है, वो नित्य निरावरण हुआ। और भगवान आत्मा कैसा, अशुद्धता का अभाव करके शुद्ध नहीं हुआ, जो अनादि अनंत शुद्ध है, आवरण का अभाव करके निरावरण नहीं हुआ, जिस पर कभी आवरण आया ही नहीं, आज तक अक्षर के अनंतवें भाव ज्ञान का उदाहरण रहा विबोध में, लेकिन वो आवरण पर्याय नहीं था, वहां भी ध्रुव स्वभाव में आवरण नहीं था। नित्य निबोधिया जीव का त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव भी नित्य शुद्ध और नित्य निरावरण है। क्यों? तो अगर शुद्ध स्वभाव नित्य शुद्ध और नित्य निरावरण नहीं हो, तो पहले तो ये व्यक्ति करो कि निबोध से निकलने के बाद उसे उस अनादि काल के आवरण को हटाने में जीवन नहीं। सब अगर नित्य, अगर नित्य स्वभाव पर आवरण हो, नित्य स्वभाव में अशुद्धता हो, तो जैसे स्वभाव नित्य है ऐसे उसकी अशुद्धता नित्य होगी, उसका आवरण नित्य होगा, तो फिर कभी भी शुद्धता और निरावरण दशा प्रकट होने का अवसर जीवन नहीं। क्यों? क्योंकि नित्य का सब कुछ नित्य, अगर उस पर आवरण है तो नित्य आवरण होगा। लेकिन क्या हुआ, निगोज से निकले, अरे चक्रवर्ती के पुत्रों का नहीं आता, शौर्य जगा दे ऐसी कहानियां हैं वर्तमानियों की। नित्य निगोज से 923 पुत्र निकले, पहली बार नित्य निगोज से निकले, विद्या का भाव धारण किया है ना, और मर करके उसके बाद भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए, लेकिन जन्म से बोलती थी। क्यों? विचारों ने बोला ही नहीं, वचन तो दो इंद्रिय से लागू होते हैं ना, दो इंद्रिय से वचन का होता है ना, अब उनको कभी दो इंद्रिय मिली नहीं, अनाधिकाल से निबोध मिलती। अब भरत चक्रवर्ती सोचे, मैं चक्रवर्ती इतना पुण्यशाली और ये विकलांग संतान कैसे पैदा हो, चक्रवर्ती की संतान विकलांग तो नहीं होती ना, तो भगवान के समो शरण में गए और भगवान के समो शरण में कहा, प्रभु ये लड़के बोलते नहीं, ऐसी विकलांग संतान कैसे हुए। तो भगवान ने कहा अभी बोलेंगे, और भगवान की दिव्य ध्वनि भगवान के समोसर में वो 923 लड़के बोले, क्या बोले, प्रभु हमें जनेश्वरी दीक्षा, इतना बोल करके जनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की और फिर मन हो गए, और उसी भाव से केवल ज्ञान लेकर के पहुंचता। बोलो, अगर नित्य निबोध में भी स्वभाव में आवरण आ गया होता, स्वभाव में अशुद्धता हो गई होती, उस अशुद्धता का और उस आवरण का कभी अभाव नहीं होता। स्वभाव में कभी आवरण नहीं होता, स्वभाव में कभी अशुद्धता नहीं होती, स्वभाव को कभी आवरण के निमित्तभूत कर्म नहीं होते, और स्वभाव को कभी भी अशुद्धता के निमित्तभूत कर्म नहीं होते। मतलब क्या, कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वभाव के साथ नहीं होता, एक समय के परिणाम के साथ होता है। क्यों? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध भी एक समय का होगा, दूसरे समय भले ही वैसा का वैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध हो जाए, लेकिन वह का वह निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं, दूसरे समय दूसरा निमित्त नैमित्तिक, तीसरे समय तीसरा निमित्त नैमित्तिक। क्यों? क्योंकि इधर पर्याय में भी उत्पाद रूप परिणाम एक एक समय का है, और उधर कर्म में भी उदय रूप परिणाम एक एक समय का है, आ गया, एक एक समय का निमित्त निमित्त स्वभाव में बिगड़ा क्या, स्वभाव में कुछ नहीं बिगड़ा, स्वभाव का कुछ नहीं बिगड़ा, दो बातें, स्वभाव में कुछ नहीं बिगड़ा और स्वभाव का कुछ नहीं बिगड़ा, जो कुछ हुआ है एक समय के परिणाम में हुआ, एक समय की अवस्था में हुआ। आचार्य कहते हैं कि जब वही एक समय की अवस्था गुलाज मान करके उस त्रिकाली स्वभाव की ओर नजर करती है कि जिसमें कुछ नहीं बिगड़ा, जिसमें कोई आवरण नहीं आया, जब वो अवस्था उस एक समय की एक वो अवस्था गुलाज मान करके त्रिकाली स्वभाव में अपनापन करती है, अनादि काल का चला आ रहा बिगाड़ मिट करके शुद्धता का प्रादुर्भाव, आवरण दशा का अभाव होकर के त्रिकाली स्वभाव को अनुभव करने योग्य आवरण का अभाव हो गया, त्रिकाली स्वभाव के योग्य अनुभव करने रूप निरावरण दशा चौथे गुण स्थान में प्रकट हुई, केवल ज्ञान में तो पूर्ण निरावरण निरावरण का होगी, लेकिन चतुर्थ गुण स्थान में भी भगवान आत्मा का प्रत्यक्ष स्व संवेदन कर सके। तो प्रत्यक्ष स्व संवेदन वो निरावरण हुआ कि नहीं, उसमें किसी का मीडिएटर है ज्ञान में, कोई माध्यम है ज्ञान में, तो वो ज्ञान स्वयं अपना अनुभव करता है साक्षात स्व सन्मुख होकर के, तो जितना वो हुआ है उतना निरावरण बना। चतुर्थ गुण स्थान में केवल ज्ञान का अवयव भूत अंश ये प्रकट है, स्वभाव में यदि बिगाड़ हो गया होता कि कैसे होता, अपने को ये सुन करके अत्यंत अपना चित्त प्रसन्न और आह्लादित होना चाहिए, मेरे स्वभाव में कोई बिगाड़ नहीं हुआ, मैंने बिगाड़ होने की मान्यता कल्पनाएं तो की, अशुद्ध आत्मा के अशुद्ध होने की कल्पनाएं तो की, आत्मा के विकृत होने की कल्पनाएं तो की, आत्मा के हीन दीन गरीब होने की कल्पनाएं तो की, वो कल्पनाओं का अस्तित्व है लेकिन उन कल्पनाओं जैसा वस्तु में कोई स्वरूप, अरे उन कल्पनाओं जैसा वस्तु में कोई स्वरूप नहीं है, इसीलिए तो उन कल्पनाओं को मिथ्या कल्पना कहते हैं। उन कल्पनाओं का मिथ्यापना क्या है, क्योंकि जैसी ये कल्पनाएं हैं वैसी वस्तु नहीं है, और जैसे ये वस्तु है वैसा वो मानती है। ये बात एक बहुत गजब की बात है, यहाँ पे कहा कि शुद्ध निश्चय से वे ये है, तो किस कारण से है, कारण तो बताओ, उन्होंने तो हे का फरमान सुना था, उसका बहुत अच्छा उत्तर दिया जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, क्योंकि वे पर स्वभाव है एक बात, और पर स्वभाव है ना, और इसलिए इसलिए वे पर स्वभाव है ना, हमारे लिए तो वो परद्रव्य है। क्या मतलब, जैसे परद्रव्य के परद्रव्य में से अपनी निर्मल पर्याय या विकारी पर्याय में लो तो परद्रव्य में से उत्पन्न नहीं, इसी तरह इन पर्याय भावों में से नई पर्याय की पर्याय के आश्रय से पर्याय आगे शुद्ध स्वभाव के आश्रय से पर्याय होती है, निर्मल पर्याय होती है, जिसके आश्रय से पर्याय की निर्मलता प्रकट हो वह स्वद्रव्य, और जिसके आश्रय से पर्याय की निर्मलता प्रकट नहीं हो अथवा पर्याय प्रकट नहीं हो वो निर्मल पर्याय होने पर भी स्वद्रव्य परद्रव्य की व्याख्या है, इसकी विशेष चर्चा है वो अपन कल भी स्वाध्याय में और करते हैं, बहुत अच्छी गंभीर चर्चा।
Yeah.